अध्याय दो। बीज बोने वाला। बीज बोने गया। यह अध्याय आधारित है मत्ती 13 आयत 1 से 19, मत्ती 13 आयत 18 से 23, मरकुस 4 आयत 1 से 20, लूका 8 आयत 4 से 15। बोने वाला और बीज। बोने वाले के दृष्टांत से मसीह स्वर्ग के राज्य की बातों और अपने लोगों के लिए महान काश्तकार के काम को दिखाता है। मैदान में एक बोने वाले की तरह वो सच्चाई के स्वर्गीय अनाज को बिखेरने के लिए आया था। उनका दृष्टांत शिक्षण ही वो बीज था जिसके साथ उनकी कृपा के सबसे पूर्व सत्य को बोया गया था। इसकी सरलता के कारण बोने वाले के दृष्टांत को वैसा नहीं माना गया था जैसे कि उसे होना चाहिए। मिट्टी में डाले गए प्राकृतिक बीज में मसीह हमारे मन को सुसमाचार के बीज की ओर ले जाने की इच्छा रखता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य अपनी ईश्वर के प्रति निष्ठा वापस लाता है। वो जो छोटे बीज का दृष्टांत देता है वो स्वर्ग का महान प्रभु होता, और धर्मी कानून जो सांसारिक बीज बोते हैं जो सत्य के बीज बोते हैं। गलील समुद्र के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई थी यीशु को देखने सुनने के लिए, उत्सुक और आशा के मुताबिक। वहां बीमार थे, चटाई पर लेटे हुए थे, उसके सामने अपनी परेशानियों को लाने का इंतजार कर रहे थे। ये मसीह का ईश्वर प्रदत्त अधिकार था जो एक पापी जाति की पीड़ा को ठीक करता था, और उसने अब बीमारों को झिड़क दिया और उसके जीवन और स्वास्थ्य और शांति चारों ओर फैल गई। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, लोगों में मसीह के और नजदीक आ गईं कि उनके पास कोई जगह नहीं थी। फिर मछली पकड़ने वाली नाव में पुरुषों के एक शब्द बोलते हुए उसने उस नाव में कदम रखा जो उसे झील के पार ले जाने के लिए इंतजार कर रही थी, और बोली लगाते हुए उसके चेलों ने जमीन से थोड़ा धक्का दिया। उसने किनारे पर भीड़ से बात की। समुद्र के पास सुंदर मैदान देखने लायक था जो पहाड़ियों से परे था, और पहाड़ी पर और मैदान पर दोनों बीज बोने और काटने वाला व्यस्त थे। एक बीज बो रहा था, दूसरा पहली फसल काट रहा था। इस दृश्य को देखते हुए मसीह ने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाएं, पर सूरज निकले पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई सा गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मसीह के मिशन को उनके समय के लोगों ने नहीं समझा। उनके आगमन का तरीका उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं था। यीशु मसीह पूरी यहूदी अर्थव्यवस्था की नींव था। इसकी लागू करने वाली सेवाएं दिव्य नियुक्ति की थीं। उन्हें लोगों को यह सिखाने के लिए डिजाइन किया गया था कि नियुक्ति किए गए समय पर वे लोग आएंगे जिन्हें उन सम्राटों ने इशारा किया था। लेकिन यहूदियों ने रूपों और सम्राटों को बढ़ा दिया था और अपनी वस्तु को खो दिया था। पुरुषों की परंपराएं, अधिकतमता और अधिनियमितियां उन पाठों से छिपी हैं जिन्हें ईश्वर ने व्यक्त करने का निश्चय किया था। ये कहावतें और परंपराएं उनकी समझ और सच्चे धर्म के अभ्यास के लिए एक बाधा बन गई, और जब तक वास्तविक समय आया तो मसीह के व्यक्ति में वे अपने सभी प्रकार की पूर्ति के लिए उनकी सभी छाया के पदार्थ को पहचान नहीं पाए। उन्होंने प्रतिरूप को अस्वीकार कर दिया और उनके प्रकारों और बेकार सम्राटों में लगे रहे। ईश्वर का बेटा आया था, लेकिन उन्होंने उसके संकेत के लिए पूछना जारी रखा, मन फिराऊं क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मत्ती 3 आयत 2। उन्होंने चमत्कार की मांग की। मसीह का सुसमाचार उनके लिए एक अड़चन था क्योंकि उन्होंने उद्धारकर्ता के बजाय संकेत की मांग की थी। वे उम्मीद करते थे कि मसीह विजय के शक्तिशाली कार्यों द्वारा अपने दावों को साबित करने के लिए सांसारिक राज्यों के खंडहरों पर अपना साम्राज्य स्थापित करेगा। यह अपेक्षा मसीह ने बोने वाले के दृष्टांत से दी, हथियारों के बल पर नहीं, हिंसक अतिविरोधी से नहीं, ईश्वर के साथ को प्रबल करने के लिए। लेकिन पुरुषों के दिलों में नए सिद्धांतों निहितार्थ द्वारा। उसने उनके उत्तर दिया कि अच्छे बीज बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। मत्ती 13:37। मसीह एक राजा के रूप में नहीं आया था, बल्कि एक बोने वाले के रूप में। राज्यों को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं, बल्कि बीज बिखेरने के लिए आया। अपने अनुयायियों को पृथ्वी की विजय की ओर इशारा करने के लिए नहीं, राष्ट्रीय महानता, लेकिन एक फसल के लिए। फरीसियों ने मसीह के दृष्टांत का अर्थ समझा, लेकिन उन्हें सिखाने के लिए कि इसका पाठ अवांछित था, उन्होंने इसे न समझने के लिए प्रभावित किया। नए शिक्षक के उद्देश्य में ये अभी भी अधिक रहस्य में शामिल भीड़ के लिए शब्दों की इतनी अजीब तरीके से उनके दिलों को हिला दिया था, और इसलिए उनके महत्वाकांक्षी को निराश किया। शिष्यों ने स्वयं को दृष्टांत नहीं समझा था, लेकिन उनकी रुचि जागृत थी। वे यीशु के निजीकरण में आए और उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। यही वह इच्छा थी जिसे मसीह ने चाहा था, कि वह उन्हें अधिक निश्चित निर्देश दे सके। उसने उन्हें समझा दिया, क्योंकि वह उन सभी को स्पष्ट रूप से अपना वचन देगा जो उसे दिल से ईमानदारी से चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, वे पवित्र आत्मा के ज्ञान को खोलते हैं, शब्द के रूप में अंधेरे में नहीं रहेंगे। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है, या मैं अपनी ओर से कहता हूं। यूहन्ना 7:17। सत्य के स्पष्ट ज्ञान के लिए सभी मसीह के पास आएंगे। वह उन्हें स्वर्ग के राज्य के रहस्यों को उजागर करेगा, और इन रहस्यों को दिल से समझा जाएगा जो सच्चाई को जानने की लालसा रखते हैं। एक स्वर्गीय प्रकाश मंदिर की आत्मा में चमक जाएगा, और दूसरों को अंधेरे रास्तों पर दीपक के उज्ज्वल चमक के रूप से प्रकट किया जाएगा। बोने वाला और निकल गया। पूर्व में मामलों की स्थिति इतनी अस्थिर थी और हिंसा से इतना बड़ा खतरा था कि लोग मुख्य रूप से दीवारों वाले शहरों में रहते थे, और पति रोजाना अपने श्रम के लिए दीवारों से बाहर चले जाते थे। इसलिए यीशु स्वर्गीय बोने वाला बोने के लिए आगे गया। उसने अपनी सुरक्षा और शांति का घर छोड़ दिया। दुनिया से पहले पिता के पास जो महिमा थी, उसे छोड़ दिया, और ब्रह्मांड के सिंहासन पर अपनी स्थिति को छोड़ दिया। आदमी एकांत में चला गया, आंसू में बोने के लिए, अपने खून से पानी पिलाया, दुनिया के लिए जीवन का बीज खो दिया। उनके सेवकों को इस तरह से बोना चाहिए। जब सच्चाई के बीज को बोने के लिए कहा जाता है, तो अब्राहम ने प्रतिबंध लगा दिया। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उत्पत्ति 12:1। और वह नहीं जानता था कि वह कहां जाएगा। इब्रानियों 11:8। इसलिए प्रेरित पौलुस यरूशलेम में मंदिर में प्रार्थना करते हुए ईश्वर से संदेशवाहक आया, यहां से जा, क्योंकि मैं तुम्हें अन्य जातियों में भेजूंगा। प्रेरितों के काम 22:21। इसलिए जिन लोगों को मसीह के साथ एकजुट होने के लिए कहा जाता है, उन्हें उनका अनुसरण करने के लिए छोड़ देना चाहिए। पुरानी संगति को तोड़ा जाना चाहिए। जीवन की योजनाओं को त्यागना चाहिए। सांसारिक आशाओं को आत्मसमर्पण करना चाहिए। परिश्रम और आंसू में, एकांत में और बलिदान के माध्यम से बीज बोना चाहिए। बोने वाले ने शब्द बोला। मसीह सत्य के साथ दुनिया को बोने आया था। यहां तक कि मनुष्य के पतन के बाद में शैतान बुराई के बीज बो रहा है। यह एकजुट से था कि उसने पहले पुरुषों पर नियंत्रण प्राप्त किया, और इस प्रकार वह अभी भी पलटने का काम करता है। पृथ्वी में ईश्वर का राज्य और उसकी शक्ति के तहत पुरुषों को लाने के लिए एक उच्च दुनिया से एक बोने वाला मसीह सत्य के बीज बोने आया था। वह ईश्वर की परिषदों में खड़ा रहा था जो अनंत के अंतरतम अभयारण्य में डूब गए थे। पुरुषों को सत्य के शुद्ध सिद्धांतों करने वाला व्यक्ति था। अजय बीज द्वारा ईश्वर का शब्द जो हमेशा के लिए जीवित और संयम रखता है पुरुषों के लिए संप्रेषित होता है। पत्रस 1:23। अदन में हमारी गिरी हुई किरण से बोले गए पहले वचन में मसीह सुसमाचार के बीज बो रहा था। लेकिन ये पुरुषों के बीच उनके व्यक्तिगत सेवकाई और उस कार्य के लिए हैं जिसे उन्होंने स्थापित किया है कि बोने वाला दृष्टांत स्पष्ट रूप से लागू होते हैं।
ईश्वर का शब्द बीज है।
हर बीज अपने आप में एक अंकुरण सिद्धांत है। इसमें पौधे का जीवन बताया गया है, इसलिए परमेश्वर के वचन में जीवन है। मसीह कहते हैं, जो शब्द मैं तुमसे कहता हूं वे आत्मा है और वे जीवन है। यूहन्ना 6:63। वह मेरा शब्द सुनता है, उस पर विश्वास करता है जिसने मुझे भेजा है, हमेशा की जिंदगी। यूहन्ना 5:24। प्रत्येक आज्ञा में और परमेश्वर के वचन के प्रत्येक वचन में शक्ति परमेश्वर का जीवन है, जिसके द्वारा आज्ञा पूरी हो सकती है और वचन साकार हो सकता है। वह जो विश्वास से वचन प्राप्त कर रहा है और वचन साकार है, वह जो विश्वास से शब्द प्रबल करता है, वह परमेश्वर का जीवन और चरित्र प्राप्त करता है। हर बीज अपनी किस्म के बाद फल लाता है। सही परिस्थितियों में बीज बोना और यह पौधे में अपना जीवन विकसित करेगा। विश्व में पवित्र बीज को विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है और ये चरित्र और ईश्वर के अनुकरण के बाद एक अमयारण्य और जीवन को प्रभावित करेगा। इज़राइल के शिक्षक परमेश्वर के वचन का बीज नहीं बो रहे थे। सत्य के शिक्षक के रूप में मसीह का कार्य उसके समय के रब्बियों के विपरीत था। वे परंपराओं पर, मानव सिद्धांतों और क्यासों पर कम हुए। शब्द के विषय में आदमी ने जो सिखाया और लिखा था वे शब्द के स्थानों पर रखे गए थे। उनकी शिक्षा में आत्मा को तेज करने की कोई शक्ति न थी। मसीह के उपदेशों का विषय ईश्वर का वचन था। उन्होंने सादे से प्रश्नकर्ताओं से मुलाकात की। यह लिखा है, शास्त्र क्या कहते हैं, तुम कितने तत्पर हो। प्रत्येक अवसर पर जब किसी दोस्त या दुश्मन द्वारा रुचि जागृत की जाती थी तो उसने शब्द का बीज बोया। वह जो रास्ता है, सत्य और जीवन, स्वयं जीवित शब्द शास्त्रों की ओर इशारा करते हुए कहता है, वे हैं जो मेरी गवाही देते हैं। और मूसा और सभी भविष्यवक्ताओं पर शुरुआत उसने अपने चेनों के लिए खोला, सभी शास्त्रों में खुद के बारे में बताए। यूहन्ना 5:39, लूका 24:27। मसीह के सेवकों को भी यही काम करना है। हमारे दिन में ईश्वर के शब्द के पुराने सत्य के रूप में मानव सिद्धांतों और व्यासों के लिए अलग सेवक है। सुसमाचार के कई प्रचारित याजक पूरी बाइबल को प्रेरित शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति एक भाग को अस्वीकार करता है, एक और सवाल और एक हिस्सा। उन्होंने अपने फैसलों को शब्द से बेहतर रूप में स्थापित किया और पवित्र शास्त्र जिसका वे प्रचार करते हैं वह अपने अधिकार पर टिका हुआ है। इसकी दिव्य प्रमाणिकता नष्ट हो जाती है। बेवफाई के बीज प्रसारित होते हैं। लोगों को भ्रम हो जाता है कि कोई ऐसा नहीं है जो विश्वास करे। कई मान्यताएं हैं कि मन को मनोरंजन का कोई अधिकार नहीं है। मसीह के दिनों में रब्बियों ने पवित्र शास्त्र के कई हिस्सों पर एक मजबूर रहस्यमय निर्माण किया गया, क्योंकि परमेश्वर के वचन की सादा शिक्षा ने उनकी प्रथाओं की निंदा की। उन्होंने इसके बल को नष्ट करने का प्रयास किया। आज भी वही किया जाता है। परमेश्वर के वचन को रहस्यवादी और अस्पष्ट दिखाने के लिए बनाया गया है, ताकि उसके कानून के प्रतिगमन का बहाना किया जा सके। मसीह ने अपने दिन में इन प्रथाओं का खंडन किया। उसने सिखाया कि परमेश्वर के वचन को सभी को समझना चाहिए। उन्होंने शास्त्रों को निर्विवाद अधिकार के रूप में इंगित किया और हमें भी ऐसा करना चाहिए। बाइबल को अनंत परमेश्वर के शब्द के रूप में प्रस्तुत किया जाना है, सभी विवादों की समाप्ति और सभी विश्वासों की नींव के रूप में। बाइबल से उसकी शक्ति को लूट लिया गया और परिणाम ए यात्मिक जीवन के स्वर को कम करते हुए देखे गए हैं। आज के कई दलितों के धर्मोपदेशों में वह दिव्य प्रकटीकरण नहीं है जो अंतरात्मा को जागृत करता है और आत्मा को जीवन देता है। सुनने वाले यह नहीं कह सकते हैं, क्या हमारा हृदय हमारे भीतर नहीं जलता था, जबकि वह हमारे साथ बात करता था। इस तरह के एक शास्त्रार्थ उसने हमारे लिए खोला। लूका 24 आयत 32। ऐसे कई लोग हैं जो जीवित परमेश्वर के लिए रो रहे हैं, दिव्य उपस्थिति के लिए तरस रहे हैं। दार्शनिक सिद्धांत या साहित्यिक निबंध हालांकि शानदार, दिल को संतुष्ट नहीं कर सकते। पुरुषों की कथन और करनी का कोई महत्व नहीं है। परमेश्वर का वचन लोगों से बोले। जिन्होंने केवल परंपराओं और मानवीय सिद्धांतों और कहावत को सुना है, उनकी आवाज को सुने, जिनके शब्द आत्मा को हमेशा के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं।
मसीह का पसंदीदा विषय परमपिता परमेश्वर की कोमलता और प्रचुर कृपा थी। उन्होंने अपने चरित्र और उनके कानून की पवित्रता पर बहुत कुछ किया। उन्होंने खुद को लोगों के लिए मार्ग, सत्य और जीवन के रूप में प्रस्तुत किया।
मसीह के मंत्रियों के विषय होने चाहिए। सच्चाई को वैसा ही पेश करो जैसे कि मसीह में है। कानून और सुसमाचार की आवश्यकता को स्पष्ट करें। आत्मा इनकार और बलिदान के मसीह के जीवन के लोगों को बताए, उनके अपमान और मृत्यु की, उसके जी उठने और उद्गम की, परमेश्वर की अदालतों में उनके लिए उनकी हिमायत, उसके वचन के अनुसार मैं फिर से आऊंगा और उन्हें स्वयं को प्राप्त करूंगा। यूहन्ना 14 आयत 3। गलत सिद्धांतों पर चर्चा करने या सुसमाचार के विरोधियों का मुकाबला करने की कोशिश करने के बजाय मसीह के उदाहरण का पालन करें। ईश्वर के खजाने के घर से ताजा सच्चाई को जीवन में उतरने दे। शब्द का प्रचार करें। सभी पानी के पास बो। मौसम में तुरंत मौसम से बाहर हो। वो मेरा वचन सुनता है, उसे मेरा वचन विश्वासपूर्वक बोलने देता हूं। गेहूं का जत्था क्या है? प्रभु ने कहा, ईश्वर का हर शब्द है। तुम उसके शब्दों को मत जोलो, ऐसा न हो कि वो तुम्हें फटकार दे और तुम एक झूठे हो। दूसरा तिमुथियुस 4 आयत 2, यशाया 32 आयत 20, यर्मया 23 आयत 28, नीति वचन 30 आयत 5-6। बोने वाला शब्द बोता है। यहां उस महान सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है जिसे सभी शैक्षिक कार्य को पूरा करना चाहिए। बीज ईश्वर का शब्द है, लेकिन हमारे दिन के बहुत से स्कूलों में परमेश्वर का वचन अलग रखा गया है। अन्य विषय मन पर कब्जा कर लेते हैं। काफिर लेखकों का अध्ययन शैक्षिक प्रणाली में एक बड़ा स्थान रखता है। संशयपूर्ण भावनाएं स्कूली पुस्तकों में रखे गए मामले से परस्पर जुड़ी हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान भ्रामक हो जाता है क्योंकि इसकी खोजों को गलत और विकृत किया जाता है। ईश्वर शब्द की तुलना विज्ञान की कथित शिक्षाओं से की जाती है और इसे अनिश्चित और अविश्वासी कहा जाता है। इस प्रकार युवाओं के मन में संदेह के बीज रोपे जाते हैं और प्रलोभन के समय में वे वसंत में आते हैं। जब परमेश्वर के वचन में विश्वास खो जाता है तो आत्मा के पास कोई मार्गदर्शक नहीं होता, कोई सुरक्षा नहीं। युवाओं को उन रास्तों में खींचा जाता है जो ईश्वर से और अनंत जीवन से दूर रहते हैं। इस कारण से आज हमारे व्यापक अधर्म को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब परमेश्वर के वचन को एक तरफ रख दिया जाता है तो प्राकृतिक हृदय के लिए बुरे जुनून को रोकने की उसकी शक्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है। पुरुष मांस को बोते हैं और उस मांस से भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं, और यहां भी मानसिक कमजोरी और अक्षमता का महान कारण है। ईश्वर के वचन से हटकर अनपढ़ आदमियों के लेखन पर ध्यान देने से मन बौना और सस्ता हो जाता है। यह शाश्वत सत्य के गहरे व्यापक सिद्धांतों के संपर्क में नहीं लाया गया है। समझ अपने आप को उन चीजों की समझ के साथ जोड़ देती है जिनके साथ वो परिचित है। इसकी शक्ति अनुबंधित होती है और एक समय के बाद इसका विस्तार करने में असमर्थ हो जाती है। ये सब झूठी शिक्षा है। प्रत्येक शिक्षक का काम प्रेरणा के शब्द के महान सत्य पर युवाओं के दिमाग को जांचना है। ये इस जीवन के लिए और आने वाले जीवन के लिए आवश्यक शिक्षा है। ये न सोचा जाए कि ये विज्ञान के अध्ययन को रोक देगा या शिक्षा में निम्न मानक का कारण बन सकता है। ईश्वर का ज्ञान स्वर्ग के समान और ब्रह्मांड की तरह व्यापक है। महान विषयों को अध्ययन के रूप में करते हैं। युवाओं को ईश्वर प्रदत्त सच्चाइयों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, तब उनके दिमाग का विस्तार होगा और प्रयास मजबूत होंगे। ये प्रत्येक छात्र को लाएगा जो शब्द का करता है विचार के व्यापक क्षेत्र में।
और उसके लिए सुरक्षित हैं जो ज्ञान का खजाना है। धर्म ग्रंथों की खोज करके हासिल की जाने वाली शिक्षा मुक्ति की योजना का एक प्रयोगात्मक ज्ञान है। इस प्रकार की शिक्षा आत्मा में ईश्वर की छवि को बहाल करेगी। ये प्रलोभन के खिलाफ मन को मजबूत और दृढ़ करेगा और शिक्षार्थी को मसीह के साथ दुनिया में दया के अपने मिशन में सहयोगी बनने के लिए फिर करेगा। ये उसे स्वर्गीय परिवार का सदस्य बना देगा और प्रकाश में संतों को विरासत को साझा करने के लिए उसे तैयार करे। लेकिन पवित्र सत्य का शिक्षक केवल वही अनुभव कर सकता है कि वो स्वयं अनुभव से जानता है। बोने वाले ने अपना बीज बोया। मसीह ने सच्चाई सिखाई क्योंकि वो सच्चाई थी। उनका अपना विचार, उनका चरित्र, जो लोग इस वचन को सिखाएंगे, वे इसे एक निजी अनुभव से अपना बना लेंगे। उन्हें पता होना चाहिए कि मसीह ने उन्हें ज्ञान और धार्मिकता और पवित्र करने और छुटकारे के लिए क्या किया है। दूसरों को ईश्वर का वचन प्रस्तुत करने में वे इसे ऐसा या ऐसा करने के लिए नहीं बना सकते हैं। उन्हें प्रेरित पत्रस के साथ घोषणा करनी चाहिए, जब हमने आपको प्रभु यीशु मसीह की शक्ति और आने के बारे में जाना जाता है, तो हमने चालाकी से तैयार किए गए दंतकथाओं का पालन नहीं किया है, लेकिन उनकी महिमा के चश्मदीद गवाह थे। दूसरा पत्रस 1:16। मसीह के प्रत्येक याजक और प्रत्येक शिक्षक को प्रिय यहून्ना के साथ कहने में सक्षम होना चाहिए, जीवन प्रकट हुआ था और हमने इसे देखा और गवाही देते हैं और आपको बताते हैं कि शाश्वत जीवन जो पिता के साथ था और हमारे लिए प्रकट हुआ था। यहून्ना 1:2। रास्ते के किनारे की भूमि। वो जिसके साथ मुख्य रूप से बोने वाले बीजों का दृष्टांत ये होता है कि मिट्टी के द्वारा बीज के विकास पर प्रभाव डाला जाता है। इस दृष्टांत से मसीह वस्तुतः अपने सुनने वालों से कह रहे थे, मेरे काम के आलोचकों के रूप में खड़े रहना या निराशा को शांत करना आपके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये आपके विचारों को पूरा नहीं करता है। आपके लिए सबसे बड़ा महत्व का प्रश्न ये है कि आपके विचारों को पूरा नहीं करता है। आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आप मेरे संदेशों को कैसे मानते हैं। आपके स्वागत या इसे अस्वीकार करने पर आपका अनंत भाग्य निर्भर करता है। रास्ते से गिरे बीज के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा, जब कोई भी राज्य के शब्द को गर्व करता है और उसे नहीं समझता है, तो दुष्ट आकर और जो उसके दिल में बोया गया था उसे दूर कर देता है। यही वो बीज है जो रास्ते के किनारों, सड़क के किनारे बोया गया बीज ईश्वर के वचन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि इसका असर एक असावधान सुनने वाले के दिल पर पड़ता है। कठोर मार्ग की तरह पुरुषों और श्रेष्ठ लोगों के पैरों से नीचे गिरते हुए वो दिल है जो दुनिया के यातायात, उसके सुख और पापों के लिए एक राजमार्ग बन जाता है। स्वार्थी उद्देश्यों और पाप पूल भोगों में लीन आत्मा पाप के छल से कठोर हो जाती है। इब्रानियों 3:13। आध्यात्मिक संकायों को लकवा मार गया है। पुरुष वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है। वे ये नहीं समझते कि ये स्वयं पर लागू होता है। उन्हें अपनी जरूरत या अपने खतरे का एहसास नहीं है। वे मसीह के प्रेम का अनुभव नहीं करते हैं और वे उनकी कृपा के संदेश के रूप में कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें चिंतित नहीं करता है। चूंकि पक्षी बीज को पकड़ने के लिए तैयार है, इसलिए आत्मा से दिव्य सत्य के बीज को पकड़ने के लिए तैयार है। उसे डर है कि ईश्वर का प्रवाह हम लोगों को जगा सकता है और वचन कठोर हृदय पर प्रभाव डाल सकता है। शैतान और उसके स्वर्गदूत उन सभाओं में हैं जहां सुसमाचार प्रचार किया जाता है। स्वर्ग के स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ दिलों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन दुश्मन बिना किसी प्रभाव के शब्द बनने के लिए अलर्ट पर हैं। अपने द्वेष के साथ बराबरी के साथ वो परमेश्वर की आत्मा के कार्य को विफल करने की कोशिश करता है, जबकि मसीह आत्मा को अपने प्रेम से आकर्षित कर रहा है। शैतान उस व्यक्ति का ध्यान हटाने की कोशिश करता है जिसे उद्धारकर्ता की तलाश में ले जाया जाता है। वो मन को सांसारिक योजनाओं से जोड़ देता है। वो आलोचना को उत्तेजित करता है या संदेह और अविश्वास को उकसाता है। बोलने वाले की भाषा या उसके तरीके का चयन सुनने वालों को खुश नहीं कर सकता है, और वे इन दोषों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस प्रकार उन्हें जिस सत्य की आवश्यकता है और जिसे ईश्वर ने अनुग्रह पूर्वक भेजा है, कोई स्थायी धारणा नहीं बनाता है।
शैतान के कई मददगार हैं। कई जो मसीह होने का दावा करते हैं, वे अन्य दिलों से सच्चाई के बीज को पकड़ने के लिए सहायता कर रहे हैं। कई लोग ईश्वर के वचन के उपदेश को सुनते हैं, वे इसे घर पर आलोचना का विषय बनाते हैं। वे धर्मोपदेश के फैसले पर बैठते हैं, क्योंकि वे एक व्याख्याता या राजनीतिक वक्ता के शब्दों पर कहते हैं। जिस संदेश को उनके लिए प्रभु का शब्द माना जाना चाहिए, वह तुच्छ या व्यंग्यात्मक टिप्पणी से सराबोर है। मंत्र के चरित्र, उद्देश्यों और कार्यों और चर्च के साथी सदस्यों के आचरण की स्वतंत्र रूप से चर्चा की जाती है। गंभीर निर्णय सुनाया जाता है, गपशप या गालियों को दोहराया जाता है, और ये गैर मसीह की सुनवाई में होता है। अक्सर ये बातें माता पिता अपने बच्चों की सुनवाई में बोलते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दूतों के प्रति सम्मान और उनके संदेश के प्रति श्रद्धा नष्ट हो जाती है, और बहुतों को सिखाया जाता है कि वे परमेश्वर के वचन को हल्के से समझें। इस प्रकार मसीहों के घरों में कई युवाओं को काफिर होने के लिए शिक्षित किया जाता है। माता पिता सवाल करते हैं कि उनके बच्चों को सुसमाचार में इतनी कम दिलचस्पी क्यों है, और इसलिए बाइबल की सच्चाई पर संदेह करने के लिए तैयार है। वे आश्चर्य करते हैं कि नैतिक और धार्मिक प्रभावों के साथ उन तक पहुंचना इतना मुश्किल है। वे ये नहीं देखते कि उनके स्वयं के उदाहरण ने उनके बच्चों के दिलों को कठोर बना दिया है। अच्छे बीज को जड़ लेने के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, और शैतान इसे पकड़ लेता है। पत्थर के टुकड़ों में जो बीज पथरीले स्थानों में गिरता है, वही वह है जो वचन को सुनता है और जल्दी ही खुशी प्राप्त करता है। अभी तक वह अपनी जड़ में नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए जब उसके कारण क्लेश के कारण क्लेश या उत्पीड़न उत्पन्न होता है, तो वह नाराज होता है। पथरीली जमीन पर बोया गया बीज मिट्टी की गहराई को कम करता है। ये पौधा जल्दी उगता है, लेकिन इसकी वृद्धि को बनाए रखने के लिए पोषक तत्व खोजने के लिए जड़ चट्टान में प्रवेश नहीं कर सकती है, और ये जल्दी ही नष्ट हो जाती है। धर्म का पेशा बनाने वाले कई पथरीली भूमि के श्रोता हैं, पश्थवी, परंतु पर अंतर्निहित चट्टान की तरह प्राकृतिक हृदय का स्वार्थ उनकी अच्छी इच्छाओं और आकांक्षाओं की मिट्टी को कमजोर करता है। स्वयं का प्रेम वश में नहीं है, उन्होंने पाप की अधिकता को नहीं देखा है, और इसके अपराध की भावना के तहत दिल को विनम्र नहीं किया गया है। ये वर्ग आसानी से आश्वस्त हो सकता है और उज्ज्वल रूपांतरित हो सकता है, लेकिन उनके पास केवल एक सतही धर्म है। ऐसा इसलिए नहीं है कि पुरुष तुरंत शब्द प्राप्त करते हैं, इसलिए नहीं कि वे इसमें आनंदित होते हैं कि वे दूर हो जाते हैं। जैसे ही मत्ती ने उद्धारकर्ता की पुकार सुनी, तुरंत वह उठ गया, सभी को छोड़ दिया और उसके पीछे चला गया। जैसे कि दिव्य वचन हमारे दिल में आता है, ईश्वर हमें प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, और इसे खुशी के साथ स्वीकार करना सही है। खुशी एक पापी के ऊपर स्वर्ग में होगी पश्चाताप करता है, लूका 15:7, और आत्मा में आनंद है जो मसीह पर विश्वास करता है। लेकिन जो लोग दृष्टांत में हैं, उन्हें तुरंत शब्द प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। लागत की गणना नहीं करते हैं, वे इस पर विचार की सभी आदतों को सामने नहीं लाते हैं, और अपने आप को इसके नियंत्रण के लिए पूरी तरह से उपज देते हैं। पौधे की जड़ मिट्टी में गहराई से टकराती है, और दृष्टि से छिपी हुई पौधे के जीवन को पोषण देती है, तो मसीही के साथ आत्मा के अदृश्य मिलन से है, विश्वास के माध्यम से कि आध्यात्मिक जीवन का पोषण होता है। लेकिन पथरीली जमीन सुनने वाले मसीह के बजाय स्वयं पर निर्भर करते हैं। वे अपने अच्छे कामों और अच्छे आवेगों पर भरोसा करते हैं, और अपनी धार्मिकता से मजबूत होते हैं, वे प्रभु में मजबूत नहीं हैं, और उनकी धारणा है कि उनकी शक्ति न हो सकता है। इस तरह वे खुद में निहित नहीं हैं, क्योंकि वो मसीह के साथ नहीं जुड़े हैं।
गर्मी का सूरज
जो कठोर अनाज को मजबूत करता है और नष्ट कर देता है, जो कि जड़ की गहराई नहीं है। तो वह जो अपने आप में जड़ नहीं है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब क्लेश या उत्पीड़न शब्द के कारण उत्पन्न होता है तब तक वह नाराज होता है। कई लोग पाप से मुक्ति के बजाय दुख से बचने के तरीके के रूप में सुसमाचार प्राप्त करते हैं। वे एक मौसम के लिए आनंदित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि छह गर्म उन्हें कठिनाई और परीक्षण से मुक्त करेगा, जबकि जीवन उनके साथ सहजता से चलता है, वे लगातार मसीही बन सकते हैं। लेकिन वे प्रलोभन के उग्र परीक्षण के नीचे बेहोश हो गए, मसीह के लिए तिरस्कार सहन नहीं कर सकते। जब परमेश्वर का वचन कुछ पोषित पाप को इंगित करता है या आत्मिनकार या बलिदान की आवश्यकता होती है तो वे नाराज होते हैं। इससे उन्हें अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ेंगे। वे वर्तमान असुविधा और परीक्षण को देखते हैं और शाश्वत वास्तविकताओं को भूल जाते हैं। यीशु को छोड़ने वाले शिष्यों की तरह वे कहने के लिए तैयार है, ये एक कठिन कहावत है। कौन इसे सुन सकता है? यूहन्ना 6:60। इसके अलावा बहुत से लोग जो ईश्वर की सेवा करने का दावा करते हैं लेकिन जिन्हें उनके बारे में कोई प्रयोगात्मक ज्ञान नहीं है, उनकी इच्छा को करने की उनकी इच्छा अपने स्वयं के झुकाव पर आधारित है, न कि पवित्र आत्मा के गहरे विश्वास पर। उनके आचरण को ईश्वर के कानून के साथ सद्भाव में नहीं लाया जाता है। वे मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं लेकिन वे ये विश्वास नहीं करते कि वह उन्हें उनके पापों को दूर करने के लिए शक्ति देगा। एक जीवित उद्धारकर्ता टेक साथ उनका कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है और उनके पात्रों में वंशानुगत और खेती दोनों के दोषों का पता चलता है। पवित्र आत्मा की एजेंसी के लिए एक सामान्य तरीके से आश्वासन देना एक बात है और पश्चाताप के लिए बुलावा करने वाले एक प्रतिनिधि के रूप में उनके काम को स्वीकार करने के लिए एक और चीज है। कई लोग ईश्वर से व्यवस्था की भावना महसूस करते हैं, आत्मा और पाप के लिए उनके बंधन का एहसास करते हैं, वे सुधार के लिए पुतले बनाते हैं लेकिन वे स्वयं को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। वे खुद को पूरी तरीके से मसीह के हाथों में नहीं देते हैं, उनकी इच्छा को करने के लिए दैवीय शक्ति की तलाश करते हैं। वे ईश्वरीय अनुकरण के बाद ढलने को तैयार नहीं हैं। सामान्य तरीके से अपनी खामियों को स्वीकार करते हैं लेकिन वे अपने विशेष पापों को नहीं छोड़ते। प्रत्येक गलत कार्य के साथ पुराना स्वार्थी स्वभाव मजबूत हो रहा है। इन आत्माओं के लिए एकमात्र आशा खुद को मसीह के निकोदीमस के शब्दों की सच्चाई का एहसास है। आपको फिर से पैदा होने के अलावा वह परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता है। यूहन्ना 3:7। सच्ची पवित्रता परमेश्वर की सेवा में पूर्णता है। ये सच्चे मसीही जीवन की स्थिति है। अविभाजित सेवा के लिए मसीह एक अनारक्षित अभिषेक के लिए कहता है। वह दिल, दिमाग, आत्मा, ताकत की मांग करता है, स्वयं को पोषित नहीं करता है। वह जो खुद के साथ रहता है वह मसीह नहीं है। प्रेम क्रिया का सिद्धांत होना चाहिए। प्रेम स्वर्ग और पृथ्वी में परमेश्वर की सरकार का अंतर्निहित सिद्धांत है और हम में मसीह के चरित्र की नींव होना चाहिए। यह अकेले ही बना सकता है और उसे स्थिर रख सकता है। ये अकेले उस परीक्षण और प्रलोभन झेलने में स्वयं को सक्षम कर सकता है और त्याग में प्रेम प्रकट होगा। छुटकारे की योजना बलिदान में रखी गई थी। एक बलिदान इतना व्यापक, गहरा और उच्च होता है कि वह अमीर हो। मसीह ने सभी को बल दिया और जो लोग मसीह को प्राप्त करते हैं वे अपने उद्धार के लिए सभी बलिदान करने के लिए तैयार होंगे। उसके सम्मान और गौरव का विचार किसी और चीज से पहले आएगा। यदि हम यीशु से प्यार करते हैं तो हम उसके लिए जीना पसंद करेंगे, उसके लिए धन्यवाद का दान भेंट करेंगे, उसके लिए श्रम करेंगे। श्रम बहुत हल्का होगा। उनकी खातिर हम पीड़ा और कष्ट और बलिदान को स्वीकार करेंगे। हम पुरुषों के उद्धार के लिए उनकी लालसा के प्रति सहानुभूति रखेंगे। हम आत्माओं के लिए वही कोमल तृष्णा महसूस करेंगे जो उन्होंने महसूस की है। ये मसीह का धर्म है। इससे कम कुछ भी एक धोखा है।
सत्य का कोई सिद्धांत या शिष्यत्व का पेशा किसी भी आत्मा को नहीं बचाएगा। हम मसीह से तब तक नहीं मिल सकते जब तक हम उनके पूर्ण नहीं होते। मसीही जीवन में आधे मन से पुरुष कमजोर और अपनी इच्छा में परिवर्तनशील हो जाते हैं। स्वयं और मसीह की सेवकाई, दोनों की सेवा करने का प्रयास व्यक्ति को पथरीली भूमि का श्रोता बना देता है, और जब वो परीक्षा में आता है तो सहन नहीं कर पाता है। कांटों के बीच में, उन्होंने कांटों के बीज भी प्राप्त किया। ये वो बीज है जो वचन को सुनता है और इस दुनिया की देखभाल और वो धन की धोखेबाजी करता है, वचन को चोक करता है और वो अधूरा है। सुसमाचार का बीज प्रायः और विषैले खरपतवारों के बीच पड़ता है, और अगर मानव हृदय में नैतिक परिवर्तन नहीं होता है, अगर पुरानी आदतों, प्रथाओं और पाप के पूर्ण जीवन को पौधे नहीं छोड़ा जाता है, तो गेहूं की फसल काटी जाएगी। कांटे फसल बनकर आएंगे और गेहूं को बाहर निकाल देंगे। अनुग्रह केवल उस हृदय में पनप सकता है जो सत्य के बीज के लिए निरंतर तैयार किया जा रहा है। किसी भी मिट्टी में पाप के कांटे उगेंगे, उन्हें कोई साधना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अनुग्रह की सावत पानी से खेती की जानी चाहिए। बाधाओं और कांटे हमेशा उगने के लिए तैयार होते हैं, और शुद्धिकरण का काम लगातार आगे बढ़ना चाहिए। यदि हृदय को परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं रखा जाता है, यदि पवित्र आत्मा व चरित्र को परिष्कृत करने और उसे बढ़ाने के लिए बिना रुकावट के काम नहीं करता है, तो पुरानी आदतें जीवन में खुद को प्रकट करेगी। पुरुष सुसमाचार पर विश्वास करने के लिए प्रोफेसर हो सकते हैं, लेकिन जब तक वे सुसमाचार से पवित्र नहीं हो जाते हैं, तो पाप उन पर विजय प्राप्त कर रहा है। जिन कांटों को काट दिया गया है लेकिन उखाड़ नहीं सकते हैं, जब तक कि आत्मा उनके साथ फैलती है। मसीह ने उन चीजों को निर्दिष्ट किया जो आत्मा के लिए खतरनाक हैं। जैसे कि मरकुस द्वारा दर्ज किया गया था, उन्होंने इस दुनिया की चिंताओं, धन की धोखेबाजी और अन्य चीजों की लालसा का उल्लेख किया है। लूका इस जीवन की देखभाल, धन और सुख को निर्दिष्ट करता है। ये वही है जो दुनिया को बढ़ाते हैं। बढ़ते आध्यात्मिक बीज को आत्मा मसीह से पोषण करना बंद कर देती है और आत्मिकता दिल से मर जाती है। इस दुनिया की परवाह करता है। कोई भी वर्ग सांसारिक देखभाल के मोह से मुक्त नहीं है। गरीबों और वंचितों के लिए और चाहने का डर और बोझ लाते हैं। अमीरों को नुकसान का डर है और चिंतित लोगों की भीड़ है। मसीह के कई अनुयायी सबक को भूल जाते हैं। उसने हमें मैदान के फूलों से सीखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्हें उसकी निरंतर देखभाल पर भरोसा नहीं है। मसीह उनका बोझ नहीं, क्योंकि उन्होंने इसे अपने ऊपर नहीं डाला। इसलिए जीवन की परवाह किए बिना, जो उन्हें मदद और आरंभ के लिए उद्धारकर्ता के पास ले जाना चाहते हैं, वो उन्हें उससे अलग कर देगा। जो लोग परमेश्वर की सेवा में फलदायी हो सकते हैं, वे धन प्राप्त करने पर तुले हुए हैं। उनकी पूरी ऊर्जा व्यावसायिक उद्यमों में अवशोषित हो जाती है, और वे आध्यात्मिक प्रकृति की चीजों की उपेक्षा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार वे स्वयं को ईश्वर से अलग कर लेते हैं। हम शास्त्र में व्यापार में सुस्त नहीं है से जुड़े हैं, रोमियो 12 आयत 11। हम श्रम करने के लिए हैं कि हम इस प्रदान कर सकते हैं जिसे जरूरत है। मसीहों को काम करना चाहिए, उन्हें व्यवसाय में संलग्न होना चाहिए, और वे पाप किए बिना ऐसा कर सकते हैं। लेकिन कई लोग व्यवसाय में इतने अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि उनके पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है, बाइबल के अध्ययन के लिए समय नहीं है, ईश्वर की तलाश करने और उनकी सेवा करने का कोई समय नहीं है। कभी कभी आत्मा की लालसा पवित्रता और स्वर्ग के लिए निकल जाती है, लेकिन ईश्वर की आत्मा के राजसी और आधिकारिक वचन को सुनने के लिए दुनिया के वैभव से अलग होने का समय नहीं है। अनंत काल की चीजों को गौड़ बना दिया जाता है। दुनिया की चीजों को सर्वोच्च वचन के बीज के लिए फल लाना असंभव है। आत्मा के जीवन के लिए दुनियादारी के कांटों को पोषण देने के लिए दिया जाता है।
और कई जो बहुत अलग उद्देश्य के साथ काम कर रहे हैं, एक त्रुटि में पड़ जाते हैं। वे दूसरों के भले के लिए काम कर रहे हैं। उनके कर्तव्यों को दबाया जा रहा है। उनकी जिम्मेदारियां कई हैं और वे अपने श्रम को भक्ति की भीड़ के लिए अनुमति देते हैं। प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ संबंध और उसके वचन का अध्ययन उपेक्षित है। वे भूल जाते हैं कि मसीह ने कहा है, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5। वे मसीह से अलग चलते हैं। उनका जीवन उनकी कृपा से व्याप्त नहीं है और स्वयं की विशेषताओं का पता चलाते हैं। उनकी सेवा वर्चस्व की इच्छा से विवाहित है और कठोर हृदय के असहनीय लक्षण। यह मसीही धर्म में विफलता के प्रमुख रहस्यों में से एक है। यही कारण है कि इसके परिणाम इतने कम हैं। धन की कपटपूर्णता धन के प्यार में एक मोहक और भ्रमक शक्ति है। बहुत बार जो लोग सांसारिक खजाने के अधिकारी होते हैं, वे भूल जाते हैं कि ईश्वर ही हैं जो उन्हें धन पाने की शक्ति देते हैं। वे कहते हैं, मेरी शक्ति और मेरे हाथ की ताकत ने मुझे ये धन दिया। व्यवस्था विवरण 8:17। उनके धन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जगाने के बजाय स्वयं के उत्थान की ओर ले जाते हैं। उन्होंने परमेश्वर पर अपनी निर्भरता और अपने साथी पुरुषों के प्रति अपने दायित्व के बारे में खो दिया। ईश्वर की महिमा और मानवता के उत्थान के लिए एक प्रतिभा के रूप में धन के संबंध में वे इसे स्वयं की सेवा के साधन के रूप में देखते हैं। मनुष्य में ईश्वर की विशेषताओं के विकास के बजाय इस प्रकार उपयोग किए जाने वाले धन उसे शैतान के गुर्गों में विकसित कर रहे हैं। शब्द का बीज कांटों से भरा होता है और इस जीवन का सुख आमोद प्रमोद में खतरा है जो केवल आत्मसंतुष्टि के लिए मांगा जाता है। भोग की सभी आदतें जो शारीरिक शक्तियों को कमजोर करते हैं, जो कि मिनट को बताती हैं या जो आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ती हैं, वे हैं शारीरिक रूप से वासनाएं जो आत्मा के खिलाफ युद्ध करती है। पत्रस 2:11। अन्य चीजों की वासना। ये जरूरी नहीं कि चीजें अपने आप में पापपूर्ण हों। कुछ ऐसा जो ईश्वर के राज्य के बजाय पहले किया जाता है। जो कुछ भी ईश्वर से मन को आकर्षित करता है, जो कुछ भी मसीह से दूर स्नेह को आकर्षित करता है, वो आत्मा का दुश्मन। जब मन युवा और जोरदार और तेजी से विकास के लिए अति संवेदनशील होता है, तो स्वयं की सेवा करने के लिए महत्वाकांक्षी होने का बहुत प्रलोभन होता है। यदि सांसारिक योजनाएं सफल होती हैं तो एक पंक्ति में जारी रहने के लिए झुकाव होता है जो विवेक को मृत करता है और एक सही अनुमान को रोकता है कि चरित्र की वास्तविक उत्कृष्टता का गठन क्या होता है। जब परिस्थितियां इस विकास का पक्ष लेती हैं तो विकास को परमेश्वर के वचन से निषिद्ध दिशा में देखा जाता है। अपने बच्चों के जीवन के इस प्रारंभिक समय में माता पिता की जिम्मेदारी बहुत महान है। युवाओं को सभी प्रभावों के साथ घेरना उनका उद्देश्य होना चाहिए, जो उन्हें जीवन के सही विचारों को एक सफलता प्रदान करेगा। इसके बजाय कितने माता पिता इसे अपने बच्चों की सांसारिक समृद्धि के लिए सुरक्षित करना पहली वस्तु बताते हैं। उनके सभी संग इस वस्तु के संदर्भ में चुने गए हैं। कई माता पिता के लिए अपने घर किच बड़े शहर में बनाते हैं और अपने बच्चों को फैशन के समाज में प्रस्तुत करते हैं। वे उन्हें उन प्रभावों से घेरते हैं जो दुनियादारी और गर्व को प्रोत्साहित करते हैं। इस वातावरण में मन और आत्मा बौना हो जाती है, जीवन के महान उद्देश्य दृष्टि से खो देते हैं। अनंत काल के ईश्वर के पुत्र होने का विशेषाधिकार सांसारिक लाभ के लिए है। कई माता पिता अपने प्यार के मनोरंजन के लिए अपने बच्चों की खुशी को बढ़ावा देना चाहते हैं। वे उन्हें खेल में संलग्न होने और आनंद की पार्टियों में भाग लेने की अनुमति देते हैं और उन्हें प्रदर्शन और बात संतुष्टि में स्वतंत्र रूप से उपयोग करने के लिए पैसा प्रदान करते हैं। आनंद की अभिलाषा का भोग किया जाता है, ये उतना ही मजबूत हो जाता है। इन युवाओं की रुचि आमोद प्रमोद में अधिक अनुपस्थित है, जब तक कि वे इसे जीवन की महान वस्तु के रूप में नहीं देखते हैं। वे आलस्य और स्वभोग की आदतें बनाते हैं, जो उनके लिए कभी भी स्थिर मसीही बनाने के लिए लगभग असंभव बना देते हैं। यहां तक कि चर्च, जो सत्य का स्तंभ और आधार होना चाहिए, सुख के स्वार्थी प्रेम को प्रोत्साहित करते हुए पाया जाता है। तब धन छह पार्मिक उद्देश्यों के लिए जाना है तो कई चर्चा का क्या मतलब है? बाजारों, रात के खाने, फैंसी मेले, यहां तक कि उपकरणों जैसे लॉटरी के लिए। अक्सर ईश्वर की पूजा के लिए निर्धारित स्थान को दावत और पीने, खरीदने, बेचने और मनोरंजन के स्थान बना दिया जाता है। ईश्वर के घर प्रति सम्मान और उनकी पूजा श्रद्धा युवाओं के मन में कम होती है। आत्मसंयम के बाधाओं को कमजोर किया जाता है। स्वार्थ, भूख, प्रदर्शन के प्यार के लिए अपील की जाती है और वे भोग के रूप में मजबूत होते हैं। शहरों में आनंद और मनोरंजन केंद्रों की खोज। कई माता पिता जो अपने बच्चों के लिए एक शहर का घर चुनते हैं, उन्हें अधिक से लाभ देने के लिए सोचते हैं, निराशा के साथ मिलते हैं और बहुत देर से अपनी भयानक गलती पर पश्चाताप करते हैं। आज के शहर तेजी से सदोम और अमोरा की तरह बन रहे हैं। कई छुट्टियां आलस्य को प्रोत्साहित करती हैं। रोमांचक खेल, थिएटर जाना, घुड़दौड़, जुआ, शराब पीना और खुलासा करना हर जुनून को तीव्र गतिविधि के लिए प्रेरित करता है। युवा लोकप्रिय धारा में बह गए हैं। जो लोग अपनी मर्जी से मनोरंजन करना सीखते हैं, वे प्रलोभनों के द्वार को खोलते हैं। वे खुद को सामाजिक उल्लास और विचारहीन मिथ्या तर्क देते हैं और आनंद प्रेमियों के साथ उनके संभोग कहे मन पर एक नशीला प्रभाव पड़ता है। जब तक वे इच्छा और प्रेमियों के क्षमता दोनों को नहीं खो देते हैं, तब तक वे एक प्रकार की अपव्यय से दूसरे तक पहुंच जाते हैं। उनकी धार्मिक अपेक्षाएं ठंडी हैं, उनका आध्यात्मिक जीवन अंधकारमय है। आत्मा के सभी कुलीन संकाय आध्यात्मिक दुनिया के साथ मनुष्य के जोड़ने वाले सभी विवादित हैं। यह सच है कि कुछ लोग अपनी मूर्खता के और पश्चाताप देख सकते हैं, ईश्वर उन्हें क्षमा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आत्माओं को घायल कर दिया और खुद को एक आजीवन संकट में डाल दिया है। विवेक की शक्ति, जिसे कभी भी सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए उत्सुक और संवेदनशील बनाए रखा जाता है, एक महान उपाय है। वे पवित्र आत्मा की मार्गदर्शक आवाज को पहचाने या शैतान के उन करणों के समझने के लिए जल्दी नहीं है। बहुत बार खतरे के समय वे प्रलोभन में पड़ जाते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं। उनके सुखमय जीवन का अंत इस दुनिया के लिए और दुनिया के आने के लिए बर्बाद है। मानव आत्मा के लिए जीवन का खेल खेलने में शैतान, धन, सुख और सभी का उपयोग किया जाता है। चेतावनी दी गई है, दुनिया से प्यार नहीं, दुनिया में जो चीज है। अगर कोई दुनिया प्यार करता है तो पिता का प्यार इसके अंदर नहीं है। दुनिया में तो कुछ भी है, उसके लिए मौस की लालसा है और औखों की वासना, और जीवन का गौरव पिता का नहीं है परंतु दुनिया का है। यूहन्ना 2:15-16। जो वह एक खुली किताब के रूप में पुरुषों के दिलों को पढ़ता है, अपने आप को ध्यान में रखे। किसी भी समय अपने दिलों में इस जीवन की खुशी और लापरवाहियों से बचाने के साथ खत्म कर देना चाहिए। लूका 21:34। और पवित्र आत्मा द्वारा पौलुस लिखते हैं, वे अमीर हैं, परीक्षा और प्रलोभनों में गिर जाएंगे और कई मूर्ख और आहत वासनाओं में तो विनाश और पुरुषों को विनाश में डुबा देते हैं। पैसा बुराई की सबसे बड़ी जड़ है, जो विश्वास से मिट जाने के बाद कुछ प्रतिष्ठित और कई दुखों के माध्यम से खुद को छलनी कर लिया है। 1 तिमुथियुस 6:9-10। भूमि की तैयारी। बीज बोने वाले के दृष्टांत के अनुसार मसीह मिट्टी पर बुआई परिणामों का प्रतिनिधित्व करता है। हर मामले में बोने वाला और बीज समान होता है। इस प्रकार वो ये सिखाता है कि यदि परमेश्वर का वचन हमारे दिलों और जीवन में अपना काम पूरा करने में विफल रहता है तो इसका कारण स्वयं को मूर्ख बनाना है। लेकिन परिणाम हमारे नियंत्रण से परे नहीं है, और सच है हम खुद को बदल नहीं सकते, लेकिन पसंद की शक्ति है और तय करने के लिए हमारे साथ रहता है कि हम क्या बनेंगे। सड़क के किनारे, पथरीले मैदान, कंटीले मैदान वाले सुनने वालों को ऐसा रहने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर की आत्मा कभी भी सांसारिक मोह का जादू तोड़ने के लिए और सांसारिक खजाने के लिए एक इच्छा को जगाने के लिए मोह का जादू तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये आत्मा का विरोध करने से है कि परुष परमेश्वर के वचन के प्रति असावधान या उपेक्षित हो जाते हैं। वे स्वयं की कठोरता के लिए जिम्मेदार हैं, जो अच्छे बीज की जड़ लेने से रोकता और इसके विकास जांच करने वाले बुरे विकास के लिए। दिल के बगीचे में खेती करनी चाहिए। पाप के लिए गहरी पश्चाताप से मिट्टी को तोड़ना चाहिए। जहरीले शैतानी पौधों को उखाड़ना चाहिए। एक बार कांटों द्वारा उखड़ी गई मिट्टी को केवल मेहनत श्रम द्वारा ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए प्राकृतिक हृदय की दुष्ट प्रवृत्तियां केवल यीशु के नाम और सामर्थ्य के प्रयास से ही दूर हो सकती है। यहोवा ने भविष्यवक्ता से कहा, अपने परती जीवन को तोड़ो और कांटों के बीज मत बो, अपने आप को धार्मिकता में बो, दया से काटो। यिर्मयाह 4:3, होशे 10:12। ये काम वो हमारे लिए पूरा करना चाहता है और वो हमें उसके साथ सहयोग करने के लिए कहता है। बीज बोने वाले के पास सुसमाचार प्राप्त करने के लिए दिलों को तैयार करने का एक काम है। उनकी सेवकाई बहुत अधिक उपदेश देने वाला है और वास्तविक दिल से दिल का बहुत कम है। खोई हुई आत्माओं के लिए व्यक्तिगत श्रम की आवश्यकता है। मसीह के समान सहानुभूति में हमें व्यक्तिगत रूप से करीबी लोगों को लाना चाहिए, अनंत जीवन की महान चीजों में उनकी रुचि जागृत करने के लिए। प्रमुख मार्ग कठोर हो सकता है और जाहिर तौर पर ये उनके लिए उद्धारकर्ता को पेश करने के लिए एक बेकार प्रयास हो सकता है। तर्क को समझाने के लिए शक्तिहीन हो सकता है। निजी सेवकाई में मसीह के प्यार का खुलासा हो सकता है। अपने दिल को नरम करें ताकि सत्य का बीज जड़ ले सके। सो बीज बोने वालों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि बीज मिट्टी के उबलेपन के कारण कांटों नष्ट होने बंद न हो। मसीह जीवन के बहुत शुरुआत में हर आस्तिक को इसकी आधारशिला सिखाई जानी चाहिए। उसे सिखाया जाना चाहिए कि वो केवल मसीह के बलिदान से नहीं बचाया जा सकता है, बल्कि ये कि उसे मसीह के जीवन और मसीह के चरित्र को उसके चरित्र के रूप में बनाना है। सभी को सिखाया जाए कि वे बोझ को सहन करें और प्राकृतिक झुकाव को नकारें। उन्हें आत्मवंचना में उसका अनुसरण करने, अच्छे सैनिकों के रूप में कठोरता का पालन करने के, मसीह के लिए काम करने का आशीर्वाद सीखने दें। उन्हें अपने प्यार पर भरोसा करने और अपनी परवाह करने की सीख दें। उन्हें उनके जीतने वाली आत्माओं के आनंद का स्वाद लेने दें। अपने प्यार में एक खोए हुए व्यक्ति के लिए वे स्वयं की दृष्टि खो देंगे। दुनिया के सुख अपनी शक्ति को आकर्षित करने के लिए और इसके बोझ को निराश करने के लिए खो देंगे। सत्य को प्रतिज्ञा अपना काम करेगी। ये परती जमीन को तोड़ देगा। ये न केवल कांटों के शीर्ष को काट देगा, बल्कि उन्हें जड़ से निकाल देगा। बोने वाले को हमेशा अच्छी भूमि में निराशा से मिलना नहीं होता है। बीज में से जो अच्छी भूमि में गिर गया, उद्धारकर्ता ने कहा, क्या वो वचन को गर्म कर रहा है? वह इसे समझता है जो फल को भी सहन करता है और फल लाता है, कुछ 100, कुछ 60, कुछ 30। अच्छी जमीन पर है जो ईमानदार और अच्छे दिल से वचन सुना, इसे रखने के लिए वो धीरज का फल लाता है।
ईमानदार और ईश्वर का दिल, जिसमें दृष्टांत बोलता है, पाप के बिना दिल नहीं है। सुसमाचार के लिए खो जाने का उपदेश देना है। मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप करने के लिए आया है। मरकुस 2:17। उसके पास एक ईमानदार दिल है जो पवित्र आत्मा के दष्ट विश्वास को उपज है। वो अपने अपराध को स्वीकार करता है, ईश्वर की दया और प्रेम की अपनी आवश्यकता को महसूस करता है। उसे सच जानने की सच्ची इच्छा है कि वो इसका पालन करे। अच्छा दिल एक विश्वास का दिल है। वो है पीसे परमेश्वर के वचन में विश्वास है। उसे सच जानने की इच्छा है कि वो उसका पालन करे। वो अच्छे दिल पर विश्वास की कला है, वो जो परमेश्वर के वचन में विश्वास रखता है। विश्वास के बिना वचन को प्राप्त करना असंभव है। वो ईश्वर के पास जो आता है, उसे विश्वास होना चाहिए कि वो है, और उनका प्रतिज्ञा पत्र है जो मेहनत से उसकी तलाश करता है। इब्रानियों 11:6। ये वो है जो वचन को गर्म करता है और इसे समझता है। मसीह के दिनों में फरीसियों ने अपनी आंखें बंद कर दीं। ऐसा नहीं कि देखे और उनके कानों को ऐसा लगे कि वो सुने, इसलिए उनके दिलों तक नहीं पहुंच सकीं। उन्हें अपनी विलक्षण अज्ञानता और आत्मा में लाए अंधेपन के लिए प्रतिशोध का सामना करना पड़ा। लेकिन मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वे अपने दिमाग को निर्देश देने के लिए खोले और विश्वास करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने उन पर एक आशीर्वाद का उच्चारण किया, क्योंकि उन्हें आंखों और कानों से देखा और सुना था जो विश्वास करते थे। अच्छे अच्छे सुनने वालों को पुरुषों के वचन के रूप में नहीं, परंतु ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का वचन है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13। केवल वो जो धर्म ग्रंथों को प्राप्त करता है, जो स्वयं को बोलने वाले परमेश्वर की वाणी है, एक सच्चा शिक्षार्थी है। वो वचन पर कांपता है, उसके लिए एक जीवित वास्तविकता है। वो उसे पाने की अपनी समझ और अपने दिल को खोलता है। इस प्रकार के सुनने वाले कॉर्नेलियस और उनके मित्र थे, जिन्होंने प्रेरित पत्रस से कहा, अब इसलिए हम ईश्वर के सामने यहां उपस्थित हैं उन सभी बातों को सुनने के लिए जो आपकी परमेश्वर की आज्ञा देती है। प्रेरितों 10:33। सत्य का ज्ञान बुद्धि की शक्ति पर इतना निर्भर नहीं करता है जितना उद्देश्य की शुद्धता पर, एक सरलता पर, निर्भरता की सादगी पर। उन लोगों के लिए जो हृदय की विनम्रता में ईश्वरीय मार्गदर्शन चाहते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत निकट आते हैं। पवित्र आत्मा उन्हें सत्य के समृद्ध खजाने को खोलने के लिए दिया है। अच्छी भूमि सुनने वाले, इस वचन को सुनते हुए इसे बनाए रखे। शैतान अपनी बुराई की एजसियों को पकड़ नहीं पा रहा है। वचन सुनने या पढ़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वो जो शास्त्रों द्वारा प्रवीण होने की इच्छा रखता है, उसे उस सत्य का ध्यान करना चाहिए जो उसे प्रस्तुत किया गया है। बयान ध्यान और प्रार्थना से सोचा कि उसे सच्चाई के वचन का अर्थ सीखना चाहिए और पवित्र आत्मा को अपनाना चाहिए। ईश्वर हमें महान विचारों और शुद्ध विचारों से भर देता है। वो हमें अपने प्रेम और दया पर ध्यान देने की इच्छा करता है, ताकि मुक्ति की महान योजना में हम अपने अद्भुत काम का अध्ययन कर सकें। फिर स्पष्ट और अभी भी स्पष्ट सत्य, उच्च पवित्र, हमारे दिल की शुद्धता और विचार की स्पष्टता के लिए हमारा ध्यान होगा। पवित्र विचार के शुद्ध वातावरण में रहने वाली आत्मा ईश्वर के विचार से धर्मशास्त्र के अध्ययन के साथ साम्य द्वारा परिवर्तित हो जाएगी और आगे फल लाऊं। जो लोग इस शब्द को सुनते हैं, वे इसे मानते हैं, आज्ञाकारिता में फल लाएंगे। आत्मा में प्राप्त परमेश्वर का वचन अच्छे कामों में प्रकट होगा। इसके परिणाम एक मसीही चरित्र और जीवन में दिखाई देंगे। मसीह ने खुद से कहा, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं, हे मेरे पिता, तेरा नियम मेरे दिल के भीतर है। भजन संहिता 40:8। मैं अपनी मर्जी नहीं चाहता, लेकिन पिता ने मुझे भेजा है। यूहन्ना 5:30। और पवित्र शास्त्र कहता है, उसने कहा कि जो उसमें बसा है, उसे वैसे ही चलना चाहिए जैसे वो चला। यूहन्ना 2:6।
ईश्वर शब्द अक्सर मनुष्य के वंशानुगत और चरित्र के लक्षण और जीवन की आदतों के साथ टकराव में आता है। लेकिन वचन प्राप्त करने में अच्छी भूमि में सुनने वाला अपनी सभी शर्तों और आवश्यकताओं को स्वीकार करता है। उसकी आदतों, रीति रिवाजों को ईश्वर के वचन में प्रस्तुत किया जाता है। उनके विचार में परिमित की आज्ञा मनुष्य को अनंत ईश्वर के व्रत के बगल में तुच्छता में डूबे देता है। पूरे दिल से अविभाजित उद्देश्य के साथ वह जीवन को शाश्वत की खोज कर रहा है, और नुकसान, उत्पीड़न या मृत्यु की कीमत पर वह खुद सच्चाई का पालन करेगे, और वह धैर्य के साथ फल लाता है। परमेश्वर के वचन को करने वाला कोई भी व्यक्ति कठिनाई और परीक्षण से मुक्त नहीं है। जब विपत्ति आती है, तो सच्चा मसीही बेचैन, अविश्वासी या निराश नहीं होता है। हालांकि हम मामलों के निश्चित परिणाम नहीं देख सकते हैं, या परमेश्वर की भविष्यवाणियों के उद्देश्य जो समझ नहीं आते हैं, प्रभु की कीमत अनुकंपाओं को या करते हुए हम उसकी देखभाल करते हैं और उसकी देखभाल के लिए उसके उद्धार की प्रतीक्षा करते हैं। संघर्ष के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन को मजबूत किया जाता है। परीक्षाएं भली भांति से वहन, चरित्र और कीमत, आध्यात्मिक अनुग्रह की निरंतरता में विकास होगा।
विश्वास, नम्रता और प्यार का सही फल अक्सर तूफान के बादलों और अंधेरे के बीच सबसे अच्छा होता है। किसान ने पृथ्वी के अनमोल फल की प्रतीक्षा की, इसके लिए लंबे समय तक धैर्य रखा जब तक वह जल्दी और बाद की वर्षा प्राप्त नहीं कर लेता। याकूब 5:7। इसलिए एक मसीही को अपने जीवन में फल लाने के धैर्य के साथ प्रतीक्षा करनी है परमेश्वर के वचन के लिए। अक्सर जब हम आत्मा के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर इन फलों को विकसित करने के लिए हमें परिस्थितियों में रखकर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए काम करते हैं, लेकिन हम उनके उद्देश्य और आश्चर्य को नहीं समझते हैं और नष्ट हो जाते हैं। विकास और फल के असर की प्रक्रिया को छोड़कर इनको विकसित करते हैं। हमारा हिस्सा ईश्वर के वचन को प्राप्त करना है और इसे अपने पास रखना है। अपने आप को पूरी तरह से अपने नियंत्रण के लिए पूरी तरह से उपज देता है और इससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा। अगर एक आदमी मुझसे प्यार करता है, मसीह ने कहा, वह मेरे वचन को रखेगा और माता पिता उसे प्यार करेंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ हमारा निवास बनाएंगे। एक मजबूत, एक संपूर्ण मन का बोझ हमारे ऊपर होगा क्योंकि हमारे पास सभी स्थायी शक्ति के स्रोत के साथ एक जीवित संबंध है। हमारे दिव्य जीवन में हमें यीशु मसीह की कैद में लाया जाएगा। अब हम स्वार्थ का सामान्य जीवन नहीं जिएंगे, लेकिन मसीह हम में जीवित रहेगा। उसका चरित्र हमारे स्वभाव में पुनरुत्पादित होगा। इस प्रकार हम पवित्र आत्मा के फलों को इकट्ठा करेंगे, कुछ 30, कुछ और कुछ 100।